नारायण 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 नारायण। आइए हम सब मिलकर हमारी मां के पावन श्री चरणों में वंदना करें, उन्हें प्रणाम करें। मां, अब की बार आपने बहुत प्रतीक्षा कराई, ऐसा लग रहा है कि कई युग भी बीत गए आपके दर्शन किए हुए। कथाओं में ऐसा वर्णन आता है कि जब कोई कथा सुनते हैं तो उसकी फलश्रुति होती है कि ये कथा सुनेंगे तो उसका ये लाभ होगा, ये कथा सुनेंगे तो उसकी ये फलश्रुति है। कल हमने विष्णुजी द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति सुनी और उसकी फलश्रुति हमें आज मिल रही है। भगवान विश्व पितामह ने जो भगवान कृष्ण की स्तुति की, उसके फलस्वरूप फलश्रुति के रूप में हमारी मां के दर्शन हमें आज हो रहे हैं। इसके लिए मैं ईश्वर से और यही प्रार्थना करता हूं कि मां, आप अविलंब हर साल यहां पर आए और अधिक से अधिक समय प्रेमपुरी आश्रम को दें। माता जी श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग दूसरे अध्याय पर प्रवचन करेंगी और माता जी का प्रवचन 15 सितंबर तक चलेगा और माता जी से ही प्रार्थना है कि आप अपने प्रवचन द्वारा हम सबका मार्गदर्शन करें। इन्हीं शब्दों के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, हरि ओम, हरि ओम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्वन्ति दिव्येस्तवे वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमशामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्य व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। सचिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापः त्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं नो अपवातय मनः। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे गोविंद राधे, हे गोपाल राधे, हे श्याम प्यारी राधे, हे मेरी प्यारी राधे, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे राधे 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 श्याम से मिला दे,
राधे 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 श्याम से मिला दे।
के श्याम से मिला दे, पार लगा दे।
श्याम से मिला दे, पार लगा दे।
जीवन नैया तेरे हवाले, श्याम से मिला दे, दुखड़े मिटा दे।
श्याम से मिला दे, दुखड़े मिटा दे।
राधे राधे राधे, श्याम से मिला 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 दे।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की
जय।
सत घन चित घन आनंद घन, कल्याण गुण गण लय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार करुणा वरुणालय, प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ प्रेमपुरी आश्रम के इस सभागार में, प्रातःकाल की इस पावन मंगलमय बेला में एकत्रित हुए हैं। भगवान कि जब अहेतु की कृपा होती है तो तब जीवन में ऐसा सुंदर संयोग प्राप्त होता है कि हमें सत्संग मिले। और ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ कि सचमुच आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको प्रतिदिन सत्संग प्राप्त होता है। स्त्री का संग, पुत्र का संग, संसार का संग, माया का संग तो आप निरंतर करते हैं, परंतु उससे निकलकर सत का संग करते मिलता है आपको। और सत्संग करने के लिए प्रेमपुरी आश्रम, सत्संग माने भगवान का संग, सत्य का संग, ईश्वर का संग, संत का संग, सत्संग है। और उसके अतिरिक्त जो भी हम संग करते हैं वो माया का संग है, संसार का संग, माया का संग। विचार करें कि कितनी देर हम सत्संग में रहते हैं और कितनी देर माया के संग में रहते हैं। और इस माया के संग से निकलकर, माया रूपी दलदल से अपने आप को निकालकर हम सत्संग में ले आए, ये केवल हमारे बस की बात है? बोले नहीं नहीं, ये तो भगवान की कृपा, गुरुजनों का आशीर्वाद और पूर्वजों की कृपा, उससे ही ये सब शक्य हो सकता। अन्यथा संसार रूपी, माया रूपी दलदल एक ऐसा है कि जितना दलदल से निकलने का प्रयास किया जाता है उतना ही दलदल के भीतर और फंसता चला जाता है। इस सब के पीछे जब भगवत कृपा होती है, संतों की कृपा होती है, जन्म जन्मांतर का आपका कोई सुज संचित शुभ कर्म होता है, उसके पुण्य फल स्वरूप फलश्रुति है कि उस सब की कृपा से आपको सत्संग मिला। इस सत्संग में आज हम लोग सत्संग करेंगे। बड़ा अच्छा है कि कल तक आप लोग भागवत जी की भीष्म स्तुति का संग करते रहे, तो आइए आज स्वयं भगवान की वाणी का सत्संग करें। श्रीमद् भगवत गीता साक्षात भगवान परमेश्वर की अपनी निज वाणी है और उसका सत्संग है। और ये वाणी कैसी वाणी है कि गीता जी की पृष्ठभूमि पर यदि हम गीता जी के पर विचार करते हैं तो प्रथम जो अध्याय है उसका नाम है विषाद योग। योग का पहला अर्थ तो यही है कि चित्त को सम करना ही योग है, चित्त की सम अवस्था का नाम योग है। चित्त जिसमें सम हो जाए, चित्त में समता हो, चित्त सतत एकाग्र हो, शांत हो और बुद्धि में स्थिरता हो, तो समझिए कि सबसे बड़ा योग आपको सिद्ध हो गया है। मन में सतत भगवत स्मरण चले और बुद्धि में समता रहे तो यही भक्ति है और यही ज्ञान है। और इस ज्ञान में सम को ही योग कहा गया है, सम को ही योग कहा है। सम चित्त की अवस्था है, वो योग है, और गीता जी के तो प्रत्येक अध्याय का नाम ही योग है, और पहले अध्याय का नाम है विषाद योग। विषाद माने दुख, जीव के पास दुख है, व्यथा है, पीड़ा है, कष्ट है। यदि वो अपने इस विषाद को, पीड़ा को, दुख को लेकर, कोई ये जरूरी नहीं कि आप भगवान के पास सुख लेकर के ही जाएं, यदि आपको दुख भी है, कष्ट भी है, पीड़ा भी है, व्यथा भी है, और सच है कि जीव की तो व्यथा ही व्यथा है, पीड़ा ही पीड़ा है। थोड़ा सा विचार करें, संसार में हम सबों के पास कहने और सुनने के लिए संसार में होता ही क्या है, जीव की एक अपनी व्यथा है, पीड़ा है, और वो पीड़ा चाहे समाज की पीड़ा हो, चाहे परिवार की पीड़ा हो, चाहे शरीर की पीड़ा हो, चाहे मन की पीड़ा हो, चाहे जाति देश धर्म की वर्ण की किसी तरह की भी पीड़ा हो, हम सबों के पास जब बैठ करके हम चर्चा करते हैं आपस में, अब बात करते हैं, तो हम अपनी पीड़ा के बखान के अतिरिक्त और करते भी क्या है। और संसार के आगे न जाने कितनी बार हम अपनी पीड़ाओं को, अपनी व्यथाओं को रोए होंगे, पर संसार ने हमें कभी समाधान नहीं दिया। एक विशेषता है कि नर का प्रतिनिधित्व करते हुए समस्त नर रूप में यहाँ अर्जुन है, और उन्होंने अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा यही है कि किं कर्तव्य भूमूल अवस्था है, जिन्हें वो अभी तक दुर्योधन का पक्षपाती ठहरा रहे थे, जिन पर बुद्धि पक्षपात का दोषारोपण कर रही थी, आज उन्हें देखकर बुद्धि विचलित हो गई, अस्थिर हो गई है। निमित्यानि पश्चिन्ति विप्रियाणि केशव, हे केशव, में जिस निमित्त आया था उसके तो मुझे विपरीत ही कुछ दिखाई दे रहा था। मैं आया तो युद्ध के उद्देश्य से था, परंतु जब अपने ही स्वजन संबंधियों को देखा और बुद्धि इस मोह में आकर ग्रसित हो गई, ऐसे में किंग अपने लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये निर्णय नहीं कर पा रहे। व्यथा है, पीड़ा है, किं कर्तव्य विमूढ़ अवस्था है, क्या कुछ सूझ नहीं रहा है, विवस्था है, ऐसी व्यथा को लेकर अर्जुन किसकी शरण में गए, बोले भगवान की शरण में गए। अर्जुन ने अपना विषाद भगवान के सन्मुख रखा, और भगवान की ओर से जो प्रसाद मिला, उस प्रसाद का नाम ही सांख्य योग है। सांख्य माने ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, इस अध्याय को प्रसाद योग भी कहते हैं। वास्तव में प्रसाद क्या है, सर्व दुखानां हानि रसोपजायते, जिससे दुख, जीव के दुख का अंत हो जाए, समाप्त हो जाए, और अत्यंत रस की, आनंद की प्राप्ति हो, रस रूप ब्रह्मानुभूति हो, वही तो वास्तव में प्रसाद है ना। तो गीता का दूसरा अध्याय भगवान का प्रसाद है। जीव ने विषाद दिया, भगवान ने उसके बदले में प्रसाद दिया। यदि हमें अपनी व्यथा कहनी है, मैं तो हमेशा कहा करती हूँ, दुख ऐसी जगह वर्णन करना चाहिए जहाँ दुख का वर्णन सुन करके कुछ आगे से हमें समाधान मिल सके, मार्ग मिल सके, रास्ता मिल सके। ऐसा दुख, ऐसी जगह दुख बखान करने से क्या लाभ होगा, जो आपके दुख को आपके साथ सुन ले और फिर उस दुख को उपहास बनाकर, मजाक बनाकर उड़ा दे। संसार में ऐसा करते हुए देखा गया है। जिस समय आपके दुख को सुनते हैं, इस समय तो ऐसा लगता है कि इससे बड़ी सहानुभूति और किसी और की नहीं होगी, परंतु बाद में जैसे ही नजर फिरती है, तो तुरंत देखने को मिलता है कि वो जो बात सुन रहे थे वही एक मजाक बनाकर उसमें बुराइयां, कमियां, दोष निकाले जाते हैं। संसार में किसी को ताकत नहीं कि वो आपकी पीड़ा का हरण कर सके। यदि पीड़ा हरण करने का सामर्थ्य है, ये सबलता है, क्यों संसार के पास क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक जीव व्यथित है, उसकी एक सीमा है, एक बंधन है, वो एक सीमा में बंधा हुआ है। परंतु भगवान ही एक ऐसे हैं जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, असीम हैं, और उन्हीं को ताकत है कि वो आपकी संपूर्ण पीड़ा का हरण कर सके। प्रसाद मिल सकता है तो भगवान से मिल सकता है, इसलिए भगवान का दिया हुआ प्रसाद है ये गीता, और जिसमें से सांख्य योग दूसरा अध्याय, तो ये तो प्रसाद योग ही है। भगवान ने प्रसाद दिया। गीता जी के दूसरे अध्याय के और श्लोकों को विचार करते हुए, यहाँ समय कम है तो केवल एक जो मुझे बहुत रुचिकर है, मेरी अपनी प्रियता को लेकर है, हम गीता जी के 48वें श्लोक पर विचार करें तो ज्यादा मुझे लगता है कि युक्ति संगत होगा। योगस्य कुरु कर्माणि संगत्वादनंजयः, योगस्य कर्माणि संगत्वादनंजयः, सिद्धयो असिद्धयो भूत्वा समत्वयोगमुच्यते। योगस्य योग युक्त होकर, ये जो योग है, योग युक्त होकर कर्म कर, और संगत्वाधनंजय आसक्ति को छोड़कर योग से युक्त होकर कर्म करें। प्रत्येक व्यक्ति कर्म तो कर रहा है, परंतु कर कैसे रहा है? बोले कर्म कर रहा है एक अज्ञानता से कर रहा है, अर्थात कर्तापन के अभिमान को लेकर कर रहा है, और एक व्यक्ति कर्म कर रहा है जिसके अंदर कर्तापन का अभिमान नहीं है, अकर्ता बनकर। योगस्य कुरु कर्माणि, योग युक्त होकर, योग से अभिप्राय सम होकर, जब तक बुद्धि में समता नहीं होगी, सम ही योग है। योग का वर्तमान काल में जो योग कहने से आज हमारा ध्यान, कहीं योग की कोई बात आती है तो तुरंत हम योग कहने पर समझते हैं कि योग वो जिसके करने से रोग का निवारण होता है, रोग दूर होता है। योग हो तो योग का अर्थ केवल हमने शारीरिक रोग को दूर करना समझ लिया है। ये भूल होगी कि रोग, योग रोग को दूर करता है, योग तो मन के को स्वस्थ करता है, मन के रोग को दूर करता है, और मन के रोग के दूर होने पर बुद्धि में सम हो जाना, सिद्धयो असिद्धयो, सफलता में असफलता में, दोनों को एक जैसा समझ लेना। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति पहाड़ की यात्रा में चल रहा था, चलते चलते उसके पांव में कांटा गड़ गया। कांटा गड़ने पर उसने उस कांटे को निकालने के लिए एक नुकीले कांटे का सहारा लिया और उस नुकीले कांटे से उस कांटे को निकाल लिया। उसने उस नुकीले कांटे से कांटा निकालने पर दोनों कांटों को, एक गड़े हुए कांटे को और जिस कांटे ने कांटा निकाला, उस दोनों को निकालकर दूर फेंक दिया। ऐसा नहीं कि नुकीले कांटे को जिसने उसका कांटा निकालकर पीड़ा का हरण किया हो, दुख दूर किया हो, उस कांटे पर आसक्त होकर उसने उसे अपनी जेब में रख लिया हो, संभाल करके साथ ले गया, ऐसा नहीं होता। उस कांटे को भी वो छोड़ देता है। अर्थात जैसे दुख का त्याग करे वैसे सुख का त्याग करे, सुख को भी छोड़े और दुख को भी छोड़े, सफलता को भी छोड़े असफलता को भी छोड़े, परंतु हम सफलता को अपना लेना चाहते हैं और असफलता को छोड़ना चाहते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है, हम सबों को प्रकाश बहुत प्रिय है, हमें रोशनी चाहिए, अंधकार किसी को प्रिय नहीं है, अंधेरा कोई नहीं चाहता है, सब चाहते हैं कि हमें रोशनी मिले। तो रोशनी के लिए विचार करके आप लोग अपने घरों में क्या व्यवस्था करते हैं, प्रकाश की व्यवस्था करते हैं ना, बिजली की व्यवस्था करते हैं, या जब अंधेरा होगा तब हमें अंधेरे से डर लगता है और हमें अंधेरा पसंद नहीं है, उस समय आप रोशनी का प्रबंध करते हैं, या उसका विचार करके पहले से घर बनाने से पहले ही आप ये विचार कर लेते हैं कि सूर्यास्त होगा अंधकार होगा, जब अंधकार होगा तो वो अंधकार हमें प्रिय नहीं है, प्रियकर नहीं है, उस अंधेरे को दूर करने के लिए आप अपने घरों में रोशनी का प्रकाश का पहले से ही प्रबंध करते हैं। रात आएगी दिया जलाएंगे बिजली जलाएंगे, अंधेरा दूर होगा प्रकाश दूर हो अंधकार दूर होगा, उसके लिए आप पहले से विचार करते हैं। उसी भांति केवल एकांकी विचार लेकर बहुत से लोग जीवन में केवल चाह रखते हैं कि हमें अच्छा ही अच्छा मिले, सुख ही सुख मिले, सफलता ही सफलता मिले, असफलता हमें न मिले, वो सफलता को ही के लिए ही निरंतर विचार करते हैं, कभी असफलता के लिए विचार नहीं करते। और जब उन्हें जीवन में ऐसा नहीं हो सकता है कि दिन आए और उसके पीछे रात न आए और रात आए उसके पीछे दिन न आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता है, परंतु व्यक्ति उसमें से एक पक्ष को अपना कर केवल केवल दिन ही दिल के केवल उजाले की ही रोशनी की चाह करता हुआ वो उसी के लिए निरंतर विचार करता रहेगा, तो जब उसके सामने अंधेरा आएगा वो घबराएगा, छटपटाएगा, व्याकुल होगा, उसे अत्यंत दुखी होना पड़ेगा। और यदि वो पहले से उसके लिए विचार किया हो तो उसे घबराहट नहीं होगी। रोज रात आता है, रोज अंधेरी काली रात आती है, परंतु हम पहले से विचार किए हुए होते हैं कि रात्रि को सूर्यास्त होगा अंधेरा होगा, इसलिए रात आने पर हमें घबराहट नहीं होती, बेचैनी नहीं होती, व्याकुल नहीं होते हैं, डरते नहीं है, घबराते नहीं, उस अंधकार में भी हमारे अंदर विचार रहता है कि कल सुबह की सुप्रभात को मैं देखूंगा, रोशनी आएगी, उसके लिए हम मन में विचार किए रहते हैं। भगवान कहते हैं उसी तरह से सिद्धि सफलता में और असफलता में, जीवन में असफल होने पर असफल को भी और सफल को भी दोनों में अपनी बुद्धि को जिन्होंने सम कर लिया है, समो भूत्वा समत्त योग मुच्यते, योग में सबसे बड़ा योग कौन है, बोले समत्त योग, बुद्धि में समता रहे। जब तक बुद्धि में समयोग नहीं होगा तब तक हम सांख्य को पकड़ नहीं पाएंगे। नारायण ज्ञान का अर्थ है कि अपनी बुद्धि को सम रखना। हम जरा जरा सी बात में विचलित हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, अपने आपा को अपने धैर्य को खो बैठते हैं, व्याकुल हो उठते हैं, परंतु भगवान हमें ये उपदेश देते हैं कि दोनों परिस्थिति में हमें अपने आप को सम रखना, जीवन में यही सीखना है। और इस सब योग को जिसने सीख लिया है, समझ लिया है, जीवन में उतार लिया है, वही सबसे बड़ा सांख्य योगी है, सबसे बड़ा ज्ञान योगी है। सांख्य माने ज्ञान, वही ज्ञान योगी है, वही राज योगी है, वही सांख्य योगी है जिसने समयोग को जीवन में अपना लिया, सम को जीवन में अपना लिया है। हम भले ही कितनी बातें सुनते हैं परंतु जहाँ सम बात आती है वहाँ विचलित हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। शास्त्र और संत कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी साधना केवल एक ही बात की है कि बुद्धि को हम सम रखें दोनों परिस्थितियों में। जब हमें सफलता मिले समत्व योग मुच्यते, ये अनुभूति अर्जुन को कब हुई? बोले गीता में भगवान ने उपदेश दिया कि अर्जुन सम रहकर युद्ध लड़ो, सम होकर युद्ध लड़ो। और अर्जुन ने भगवान की इस बात को समझा और समझकर उन्होंने युद्ध लड़ा और इस युद्ध में अर्जुन को बड़ी भारी सफलता मिली, महाभारत का युद्ध जीत लिए। महाभारत का युद्ध जीतने पर कुछ समय व्यतीत हुआ। कुछ समय व्यतीत होने के बाद, धर्मराज स्थापित करने के बाद, भगवान श्री कृष्ण मन में विचार करते हैं कि अब पृथ्वी में धर्म राज स्थापित हो गया है। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु आपके अवतार का प्रयोजन पूरा हो चुका है, अब आप स्वधाम गमन कीजिए। जब भगवान ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर स्वधाम जाने का विचार किया और भगवान श्री कृष्ण स्वधाम की लीला किए, इसी बीच अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए थे और भगवान की स्वधाम गमन की लीला उपरांत वो चाहते हैं कि मैं वापस भगवान की द्वारा नगरी का उन्हें रहस्य मालूम था कि द्वारिका तो सातवें दिन समुद्र में जाने वाली है। उन्होंने मन में विचार किया कि सब द्वारिका वासियों को मैं अपने साथ लेकर वापस हसनापुर चलूं। इंद्रप्रस्थ की ओर जब आने लगे तो मार्ग में देखा कि एक भील आकर रास्ते में बैठ गया है। अर्जुन ने उससे कहा कि तुम रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने का मार्ग दो। भील ने जैसे अर्जुन की कोई बात सुनी न हो, भील रास्ते में बैठा रहा। अर्जुन ने फिर कहा कि रास्ता छोड़िए, मुझे रास्ता दीजिए। अर्जुन समझे कि शायद ये मुझे नहीं पहचान पाए, मैं अर्जुन कह रहा हूं कि आप मार्ग से हट जाइए। भील ने फिर नहीं कुछ सुना। अर्जुन ने कहा कि शायद ये अर्जुन के नाम से इन्हें शंका हो गई हो कि अर्जुन नाम के कई व्यक्ति हुए, इसमें से कौन सा अर्जुन? उन्होंने कहा गांडीव धनुर्धारी, तो भी समझ में नहीं आई। फिर कहा कुंती पुत्र अर्जुन, फिर भी समझ में नहीं आई। कुंती पुत्र अर्जुन कहने पर, गांडीव धनुर्धारी कहने पर भी समझ नहीं आई तो अर्जुन ने कहा महाभारत विजेता, महाभारत युद्ध को जीतने वाला अर्जुन, तो भी रास्ते से नहीं हटा। अंत में अर्जुन ने सोचा कि मैं अपने गांडीव को लेकर टंकार करके से मैं मार्ग से अलग करूं। जैसे ही गांडीव हाथ में लेकर उसकी प्रतिज्ञा को डोरी को खींचने लगे, बाण चलाना तो बहुत दूर, उनसे गांडीव की डोरी भी न खींची गई। जिस गांडीव को हाथ में लेकर उन्होंने महाभारत युद्ध जीता था, आज वही गांडीव उनके हाथ में है, उसकी डोरी भी नहीं खींची जा रही है। अर्जुन इतने असक्त असहाय अपने को महसूस किए, तब उन्हें ये समत्व योग समझ में आया कि भगवान ने मुझे इसी वक्त के लिए आगाह किया था। भगवान ने ये समय आएगा मैं नहीं समझ पाया था, पर भगवान समझे थे, उन्होंने देखा था, इसलिए उन्होंने समत्व योग मुझे जो सिखाया था। योगस्य कुरु कर्माणि संगत्वा धनंजय सिद्धयो असिद्धयो, अर्थात समत्व योग क्या है अर्जुन को अब प्रत्यक्ष में समझ में आई। और समत्व योग समझ में आते ही अर्जुन का विषाद दूर हुआ और उसी समय उन्होंने वापस हस्तिनापुर आकर के मुख हिमालय की ओर कर लिया, हिमालय की ओर कर लिया। पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। बात केवल इतनी है कि जीवन में अर्जुन जैसे महाभारत विजेता को भी गीता समझने में कुछ टाइम लगा था। भगवान किससे गीता सुनकर महाभारत के युद्ध को तो जीत लिए थे, परंतु समत्व योग को समझने में अर्जुन को भी कुछ वक्त लगा था। तो ये जीवन का समत्व योग है नारायण। योग में सबसे बड़ी बात है संयोग, अपने आप को सदैव सम स्थिर, सम स्थिरता ये जीवन में आ जाए। अस्थिरता जीव की कैसी अस्थिरता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अर्जुन अस्थिरता का ही तो प्रमाण है कि अर्जुन स्वयं भगवान से कह रहे हैं मेरे रथ को सेना के मध्य में स्थापित कीजिए। जैसे अर्जुन का रथ सेना के मध्य में स्थापित किया गया, बीच में लेकर भगवान ने रथ खड़ा किया, मैंने तटस्थ हैं दोनों पक्ष से, और तटस्थ होकर भी वो तटस्थ नहीं रह सके, तटस्थता में स्थिर नहीं रह सके, और उन्होंने ये देख कह दिया कि भगवान मुझे तो यहाँ विपरीतता नजर आ रही है, मैं इन सब जिनके लिए मुझे राज्य चाहिए उन्हें मारकर मैं इस राज्य को लेकर क्या करूँगा। अर्थात मेरा युद्ध लड़ने का अब तक का जो निर्णय था वो अच्छा नहीं था। स्पष्ट हो गया कि जो मैंने अभी निर्णय लिया था कि युद्ध करने का, वो मेरा युद्ध का निर्णय ठीक नहीं था। जीव की बुद्धि है कैसी अस्थिरता है कि मैं जो कल था वो ठीक नहीं था, कल मैं जो इस विषय में सोच रहा था वो मेरी सोच ठीक नहीं थी, आज इस समय जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है। इस बात का क्या ठिकाना है कि आज जो मेरी सोच इस समय ठीक है वो कल के दिन भी ठीक रहेगी। ये तो लगता है आज ठीक नहीं था कल ठीक हूँ, और कल के दिन आने पर मैं आज ठीक नहीं कल ठीक हूँ। अर्थात जीव की बुद्धि तो निरंतर बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है। जिस बुद्धि में निरंतर ये बदलाव है, अस्थिरता है, उस बुद्धि का कोई अर्थ नहीं है ना। बुद्धि में समता, बुद्धि सम कब रहेगी, जब बुद्धि में पूर्ण रूप से समाधान होगा। बुद्धि में समाधान रहे अर्थात कोई संशय नहीं रहे। जब तक बुद्धि के अंदर संशय है, संशय आत्मा विनिक्षति, अर्थात मृत्यु ही वही संशय का ही नाम है। संशय वाली बुद्धि निरंतर मरती है। एक मरना वो मरना है जो शरीर से, जिसके लिए हम डरते हैं, और दूसरा मरना बुद्धि से, जो निरंतर संशयों से घिरी हुई बुद्धि रहती है वो तो मरती ही रहती है। इसलिए नारायण जो निरंतर मर रहा है अर्थात तो दुखी हो रहा है जीव, उसके लिए समाधान जीवन में प्राप्त हो, और वो समाधान प्राप्त हो सकता है तो केवल भगवान की वाणी को विचार करके हो सकता है कि हमें सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा, दोनों में अपने को सम रखना आ जाए जीवन में, यही हमें सीखना है। यदि मनुष्य जीवन में हम सम रह सके, सीखने जैसी यदि कोई बात है, समझने जैसी कोई बात है, तो मुझे लगता है केवल यही है कि हम अपने आप को स्थिर कर सके, बुद्धि में समभाव आ सके। अपना पराया तेरा जहाँ राग होता है, जहाँ राग होता है वहाँ आसक्ति हो जाती है, जहाँ अच्छा लगा वहाँ राग हो गया, और जहाँ अच्छा नहीं लगा वहाँ द्वेष हो गया। बुद्धि में राग और द्वेष, द्वेष के कारण दूर हटाना चाहते हैं और राग के कारण सटाना चाहते हैं। और ईमानदारी से सोचो नारायण, हम सारे दिन क्या करते हैं, जो अच्छा लगे उसे पास लाना चाहते हैं, उसके साथ राग करके उसे पास लाना चाहते हैं, जो जिससे जो अच्छा नहीं लगे उसे द्वेष करके उसे दूर करना चाहते हैं। कभी किसी को दूर करते हैं, कभी किसी को अपने पास करते हैं, किसी को हटाते हैं, किसी को सटाते हैं। सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक हमारी बुद्धि का एक ही कार्य, हटाना और सटाना, कभी पकड़ो और कभी छोड़ो। ऐसी जो अस्थिर बुद्धि है, इसमें सुख की प्राप्ति कहाँ हो सकती है। योग तो सुख है, परम सुख है, पर इसके लिए हमें विचार करना चाहिए। और ये योग प्राप्त होता है सांख्य से, अर्थात ज्ञान से, विचार से। मनुष्य के जीवन में हमें विचार पूर्वक अपनी बुद्धि में राग और द्वेष संपूर्ण, मैं तो हमेशा ही कहा करती हूँ, संपूर्ण अध्यात्म विद्या का तात्पर्य ही यही है। ब्रह्म विद्या का तात्पर्य क्या है, ब्रह्म विद्या कहना बताना क्या चाहती हैं, सिखाना क्या चाहती हैं, चाहे इसे ब्रह्म विद्या कहिए, औपनिषदिक विद्या कहिए, इसका तात्पर्य क्या है। तात्पर्य एक ही है, बुद्धि को राग और द्वेष से अलग करना, राग और द्वेष से हटाना। जब तक बुद्धि में राग और द्वेष रहेगा तब तक हमारी बुद्धि निष्पक्ष नहीं हो सकती, और जब तक बुद्धि निष्पक्ष नहीं है, बिना सम बुद्धि निष्पक्ष नहीं है माने सम नहीं है, और सम नहीं है तो सुख नहीं है, परम सुख नहीं है। जीवन में सुख को पाने के लिए, जिस सुख की, जिस परम सुख की, परम शांति की, परम आनंद की हम चाह करते हैं, वो आनंद, वो सुख, वो शांति एक ही चीज से प्राप्त हो सकता है। वो सिर्फ केवल एक है, बुद्धि का सम होना, बुद्धि से राग और द्वेष हटे। और इस राग और द्वेष के सूक्ष्म संस्कार इतनी सूक्ष्मता से बुद्धि के अंदर बैठी हुई है नारायण, इसे निकालें निरंतर के अभ्यास से, बुद्धि को सम रखने के लिए क्या करें। राग और द्वेष बुद्धि में न आए, इससे बुद्धि कैसे निकल सके, इसके लिए हमें सहारा लेना होगा ईश्वर का, परमात्मा का, जिसके सहारे निरंतर अपनी बुद्धि को सत्य में लगाकर, सत्य में स्थिरत करने के लिए, सत्य स्वरूप आत्मा में, सत्य स्वरूप परमात्मा में, जब तक हमारी बुद्धि को हम स्थिर नहीं करेंगे तब तक इससे राग और द्वेष नहीं हट सकते नारायण। इसीलिए निरंतर हमें सतत सतत ब्रह्म विचार की आवश्यकता, विचार पूर्वक। ये प्रसाद है भगवान का कि मनुष्य को बुद्धि दी है परमात्मा ने विचार करने के लिए। बुद्धि का कार्य ही विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक, विचार के साथ, विवेक के साथ हमें अपनी बुद्धि को सम्य भाव में स्थिर करना है। यही सांख्य योग है ना। सांख्य का जो तत्व है वो तो केवल एक बात को लेकर है, भले ही आप उसके विस्तार में यूं तो वाचारण नामधेयम अपनी वाणी का विचार करते हुए शब्दों के जाल को हम कितना ही बुनते चले जाएं, उसका कोई अंत नहीं है। ये तो वाणी विलास है, वाणी का विलास है, शब्द का अनंत सागर है, शब्द का अनंत जाल है। शब्द जाल कितना ही हम अपने सामने सुंदर से सुंदर बुन ले, और उस शब्द जाल के अंदर हम जितना घूम ले वो एक बात अलग है। यदि हम निष्पक्षता से केवल विचार करने तो केवल यही विचार करना है कि अपने को सम कैसे करें, अपनी बुद्धि को सम कैसे रखें। उसी के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी बुद्धि सम और स्थिर बनी रहे, मेरी बुद्धि कभी सफलता में और कभी असफलता को, दोनों को एक जैसा समझे। परंतु नहीं, प्रियता भाती है, अप्रियता मन को कष्ट देती है, अप्रियता से दूर भागना चाहते हैं, प्रियता को पकड़ना चाहते हैं, जीवन में सफलता को लेना चाहते हैं, असफलता को पास नहीं आने देना चाहते हैं। ये हमारे चाहने से कुछ नहीं होता नारायण, हम अपने चाह से केवल अपने आप को अशांत करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। विचार करें कि हम अपनी चाह से क्या कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, केवल चाह करना कि ऐसा हो जाए, चाहने भर से बात नहीं बनती है। इसलिए जो हो रहा है, ईश्वर सफलता आए असफलता आए, दोनों को एक जैसा समझकर एक ही समान विचार करना। गीता में भगवान कहते हैं नाशतो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सदा। जो असत है और जो सत है, सत का कोई अभाव नहीं है। जो असत है वो भी स्थिर नहीं है, जो सत जो असत्य है जिसे हमने पकड़ा हुआ है, जिसका हमने भाव किया हुआ है, जो और जिस सत्य को हम विचार नहीं कर पा रहे, उस परम सत्य पर अपने मन को बुद्धि को लगाकर हमें सत्य क्या है, बोले सत्य तो केवल ईश्वर है, सनातन है, सम है। सम होने पर ही सत्य, बुद्धि को सम रखने के लिए ईश्वर पर ही हमें विचार करना चाहिए। इसीलिए इस श्लोक का विशेष करके मुझे ऐसा लगता है कि योग यदि हमें समझना है तो केवल योग का अर्थ इतना ही नहीं कि हम आंख बंद कर बैठकर बैठ जाएं, त्राटक करने लग जाएं। इस पर एक बार मैं कोई संत से सुन रही थी, बता रहे थे कि एक बड़े अच्छे महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे और निरंतर ब्रह्म का ही वेदांत का ही विचार करते थे, स्वाध्याय करते थे, बड़े अच्छे संत थे। और उन्हीं के कुछ दूर पास में एक संत जो त्राटक विद्या करते थे और त्राटक से योगी थे और अपने त्राटक से कई रोगियों के रोग का निदान करते थे। लोग खूब आया जाया करते थे और वो अपने त्राटक से उसके रोग, उन लोगों के कष्ट को दूर कर देते थे। एक दिन की बात थी कि जो संत निरंतर भगवान का भजन करते हैं, शांति वेदांत का श्रवण पठन पाठन करते हैं, वेदांत विचार में ही निरंतर लगे रहते हैं, जो उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करते हैं, उनके सिर में बड़ा कष्ट दर्द हुआ। शिष्यों ने कहा महाराज आपके सिर में बहुत दर्द है, पास में एक योगी रहते हैं, उनके पास ऐसी विद्या है कि वो बहुत लोगों के रोग दूर करते हैं, आप भी चलिए। महात्मा जी को ले गए, महात्मा जी को ले गए, जब उन्होंने योगी ने उन पर अपनी त्राटक का प्रयोग किया, त्राटक प्रयोग करने पर उनका कष्ट, त्राटक को आज के भाषा में जो आज के समय में कहते हैं ना आप लोग रैकी, रैकी थ्योरी, जिससे कि रैकी दे करके बीमारी दूर कर दी जाती, कहती ये त्राटक विद्या है, हमारी अपनी विद्या है नारा, इसमें केवल मन की एकाग्रता ही होती है। एक ही स्थान पर अपने मन को स्थिर करके अपने शुभ संकल्प को भेजना, यही तो त्राटक विद्या है। त्राटक किया उन्होंने और त्राटक करके रोग सिर दर्द दूर हो गया। दूर हो गया तो महात्मा को लगा कि ये तो बड़ा अच्छा है। जो सांख्य विचार करने वाले थे, वो वेदांत विचार करने वाले महात्मा को बड़ा आराम लगा, तो उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा त्राटक कर दो और कष्ट दूर हो जाए। धीरे धीरे उनकी रुचि उस वेदांत से, सांख्य से हट करके उस असत्य के ऊपर, अर्थात त्राटक करके दुख दूर हुआ, सिरदर्द दूर हुआ, परंतु वो कितनी देर के लिए दूर हुआ, उसका कोई शाश्वत फल तो नहीं है, अस्थिर है, असत्य है, सत नहीं है। परंतु जिस सत तत्व को विचार कर रहे थे, उस सत तत्व से उस असत पर आकर्षित होकर वो अपने मार्ग से हट गए। तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि हमें असत आकर्षित करता है, खींचता है, सांसारिक सफलताएं हमें खींचती हैं, सिद्धियां हमें अपनी ओर खींचती हैं, आकर्षित करती हैं, और इनको इन छोड़ना प्रत्येक व्यक्ति के लिए इतना सहज नहीं है, जब तक कि पूर्ण रूप से उसे अंदर से समाधान नहीं होगा, अपनी बुद्धि में स्थिरता नहीं होगी, तब तक छूट नहीं सकता। इसलिए भगवान के आगे प्रार्थना करें और निरंतर इस बात में विचार करें कि मुझे सम रहने के लिए हे प्रभु आप मुझे पर इतनी कृपा करें कि मैं सदैव सम रह सकूं, मेरी बुद्धि आपसे इधर उधर न जा सके। भगवान से बुद्धि हटेगी तो असत्य की ओर जाएगी, असत विचारों में जाएगी, संसार के संग में जाएगी और संग में आसक्ति पर पड़ के ही जीव अनेक अनेक कष्टों को भोगता है। नारायण योगस्तु कुरु कर्माणि संगत्वा धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग मुच्यते। समत्व योग गीता जी का यही है और इसके लिए सबसे बड़ी बात है बुद्धि योग, इसको कहते हैं ईश्वर बुद्धि। इस योग का समत्व योग का दूसरा अर्थ है ईश्वर बुद्धि। ईश्वर बुद्धि कैसे हो, समत्व योग का दूसरा शब्द है कि ईश्वर बुद्धि, ईश्वर पारायण बुद्धि, भगवत पारायण बुद्धि, आत्म पारायण बुद्धि कहिए, भगवत पारायण बुद्धि कहिए, ईश्वर बुद्धि कहिए, ईश्वर पारायण बुद्धि कैसे, निरंतर ईश्वर में ये बुद्धि कैसे लग सके, उसके लिए हमें विचार करना चाहिए। और ईश्वर बुद्धि होकर जो कार्य किया जाएगा, ईश्वर पारायण बुद्धि होकर जो कार्य किया जाएगा उसमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी हमें कोई कष्ट नहीं होगा, उसमें हानि होगी या लाभ होगा, जय होगी पराजय होगी, कुछ भी हमें मिले उसे कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। जो कर्म ईश्वर बुद्धि को रखकर किया जा रहा होगा, ईश्वर पारायण होकर किया जा रहा हो, निरंतर अपनी बुद्धि को ईश्वर में स्थिर कर देना, वहीं पर ठहरा देना, ये कैसे संभव हो सकता है, बोले उसके लिए हमें सदंतर सद्विचार पूर्वक, विचार पूर्वक ही बुद्धि को परमात्मा में स्थिर किया जा सकता है। बुद्धि से विचार करें, विचार क्या करें, बोले विचार यही करें कि सत्य क्या है असत्य क्या है। जिसे हम सत्य समझ रहे हैं वास्तव में, जिस संसार को हम सत्य समझ रहे हैं ये संसार सत्य नहीं है। सत्य तो इस संसार के पीछे जो अदृश्य खड़ा है वो ईश्वर, जिससे ये संसार रूपी माया जिससे चल रही है, जो इसके पीछे इसे चलाने वाला ईश्वर है। और ईश्वर जो सृष्टि का संचालक है, ईश्वर जो सृष्टि को चलाने वाला है, जिसके संचालन में ये सकल सृष्टि चल रही है, संचालन करने का काम तो ईश्वर का है ना। ईश्वर जगत का संचालन कर रहा है और बुद्धि हमारे शरीर को चला रही। इस पर मुझे महाभारत का एक दृष्टांत स्मरण हो रहा है। नारायण प्रसंग उस समय का है, महाभारत का युद्ध चल रहा था और भीष्म पितामह बाणों की सर सैया पर लेट चुके हैं। अब दुर्योधन को जीत की आशा रह गई है कर्ण के ऊपर, और कर्ण के पास दुर्योधन पहुंचा और दुर्योधन को अपने पास आते हुए देखकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। और प्रसन्नता पूर्वक उसने कहा, मित्र तुमने जैसा अपने मित्र पर भरोसा तुम्हें करना चाहिए था वैसा भरोसा मैंने तुम्हारे अंदर पाया, इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और तुमने भरोसा किया है इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि मुझे अर्जुन के साथ जीत प्राप्त करने में किसी तरह से भी अपने आप को मैं कमजोर नहीं पाता हूँ। अर्जुन के पास यदि रथ बढ़िया है तो मेरे पास भी रथ बहुत बढ़िया है। अर्जुन के पास अस्त्र और शस्त्र विद्या है तो मेरे पास भी अस्त्र और शस्त्र विद्या है। अर्जुन के पास बल है, वीरता है तो मेरे पास भी बल और वीरता में मैं किसी तरह से भी अर्जुन से अपने आप को कमजोर नहीं पाता। अर्जुन के पास जो चीजें हैं वो सब कुछ मेरे पास है, परंतु यदि मुझे कहीं कोई कमी खटकती है तो केवल एक ही बात की कमी खटकती है, वो कमी यही खटकती है कि मेरे पास अर्जुन का जैसा, जैसा अर्जुन के पास सारथी है वैसा सारथी नहीं है। दुर्योधन ने कहा, मित्र मैं अर्जुन का जैसा सारथी तो कहां से तुम्हारे लिए लाऊं? अर्जुन का जैसा सारथी केवल एक ही है जो सिर्फ अर्जुन का सारथी है, अर्जुन का जैसा सारथी अर्जुन के लिए अर्जुन के पास ही है, माने कृष्ण सारथी हैं, हमारी इस शरीर में बुद्धि सारथी है, शरीर रूपी रथ है, इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है, जीव रूपी रथी है, तो बुद्धि सारथी है। और भगवान अर्जुन के रथ पर क्या काम कर रहे हैं? बोले सारथी का काम कर रहे हैं। ईश्वर का काम तो संचालन करना ही है, रथ का ही संचालन करते हैं। ईश्वर संसार का संचालन करता है, जो संसार का संचालन करने वाला है वही मेरी बुद्धि का संचालन भी कर रहा है, वही मेरी बुद्धि को चला रहा है। और उसी पर जो बुद्धि को जगत का संचालन करने वाला है वही मेरी बुद्धि का संचालन कर रहा है, ऐसा समझ करके ईश्वर पर अपने आप को स्थिर कर लेना, यही ईश्वर बुद्धि है। मेरी बुद्धि का प्रेरक, मेरी बुद्धि का संचालक और मेरी बुद्धि का रक्षक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सलाहकार भी हैं, परामर्शदाता भी हैं, वो समय समय पर उन्हें परामर्श भी देते हैं, समय समय पर युद्ध के लिए सलाह भी देते, मंत्रणा भी करते हैं, और उसके साथ प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक कार्य पर अर्जुन के साथ अभिन्न रूप से भगवान श्री कृष्ण जुड़े रहते हैं। अर्थात अर्जुन से एक पल के लिए भी भगवान श्री कृष्ण अलग नहीं होते, ऐसा अर्जुन को दृढ़ विश्वास है। और उस विश्वास के साथ वो भगवान को हमेशा सदा सदा सर्वदा अपने साथ निरंतर पाते हैं। तो जैसा विश्वास अर्जुन का भगवान के लिए है वैसा ही विश्वास हमारा भगवान के लिए हो, और यदि ऐसा विश्वास हमारा भगवान के लिए होगा तो हम भी हर जगह, हर स्थान पर, हर कार्य पर अपने आप को भगवान से अभिन्न रूप से पाएंगे नारायण, कि कृष्ण हमसे कहीं अलग नहीं है। अर्थात कृष्ण रूपी परमात्मा हमसे कहीं अलग नहीं है, वो हमारी बुद्धि के साथ है, हमारी हमारे साथ है, हमारे पास है, वही मेरा संचालन कर रहे हैं। यदि ये भाव हमारे अंदर होगा, बुद्धि इस बात में स्थिर होगी, तो तब संसार में न तो राग रहेगा और न ही द्वेष रहेगा नारायण। अर्थात ईश्वर बुद्धि होकर जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये ईश्वर ही मुझसे करवा रहा है, ईश्वर की ऐसी प्रेरणा है, ईश्वर ऐसा चाहते हैं, और वो ईश्वर की प्रेरणा समझ करके हम कार्य करेंगे तो वो कार्य कभी हमारे लिए बंधन का कारण नहीं बन सकता, कष्ट का कारण नहीं बन सकता। ईश्वर बुद्धि योग है, और ईश्वर बुद्ध बार बार सारी गीता में आप विचार करें गंभीरता पूर्वक, तो भगवान ने गीता जी की दृष्टि में सबसे बड़ा योग समत्व, तो योग सम को ही योग कहा है। अर्थात ईश्वर बुद्धि रख करके ही कार्य करने की भगवान की प्रेरणा है, ऐसा समझकर यदि हम विचार पूर्वक इस बात को निश्चित कर लें कि मुझे ईश्वर बुद्धि रखनी है, अपनी बुद्धि को बुद्धि के स्थान पर, मेरी बुद्धि का स्थान केवल भगवान हो और भगवान में बुद्धि हो, ऐसा समझकर जैसे उस उन पर स्थिर भाव से विचार करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन हमारा शांति और आनंददायी बन सकेगा नारायण। तो इस अध्याय को, इस श्लोक को लेकर मैं यही आपको कहना चाहती थी, योगस्तु कुरु कर्माणि, योग युक्त होकर अपनी बुद्धि को भगवान में स्थिर कर कार्य करना है। इन्हीं शब्दों के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। विषय केवल मेरा एक ही है, बुद्धि योग, सांख्य योग अर्थात बुद्धि योग, और बुद्धि से ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये साधन में साधन भी है और भगवान से दूर करने वाली भी बुद्धि, याद रखना। जो बुद्धि जितनी उपयोगी है भगवान को प्राप्त करने के लिए, वही बुद्धि उतनी ही हमें भगवान से दूर करने के लिए बाधक भी है। यही साधन भी है और यही सबसे बड़ी बाधा भी है। इस बुद्धि को सही दिशा में ले जाएं, जिससे भगवत प्राप्ति हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। हरि ओम तत्सत।
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।